lecture by His Grace Rukmini Krishna Prabhu, lecture in Sri Sri Jalaparta Sarthi Temple. The topic of the lecture is Taking the Shelter of the Vaishnavas. Lecture dated 24th May 2007, 3rd Canto, 7th Chapter, Verse Number 20, Srimad Bhagavatam, Hare Krishna.
वर्तमसु मार्ग पर यात्रा जिसमें उपगीयते महिमा गाई जाती है नित्यं सदैव देवा देवताओं के देवः स्वामी जनार्दन जीवों के नियंता अनुवाद। जिन लोगों की तपस्या न्यून है वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं जो भगवत धाम यानी वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे होते हैं। शुद्ध भक्त शत प्रतिशत उन भगवान की महिमा के गायन में लगे रहते हैं जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों के नियंता है। आप सब मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। जिन लोगों की तपस्या न्यून है वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं जो भगवत धाम यानी वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे होते हैं। शुद्ध भक्त शत प्रतिशत उन भगवान की महिमा के गायन में लगे रहते हैं जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों के नियंता है। तात्पर्य, जैसा कि समस्त अधिकारियों ने संस्तुति की है, मुक्ति का मार्ग महात्मा जनों की सेवा करना है। जहां तक भगवद गीता का संबंध है, महात्मा जन वे शुद्ध भक्त हैं जो ईश्वर के धाम वैकुंठ के मार्ग पर चलते हैं और जो शुष्क लाभ रहित दर्शन की बातें ना करके भगवान की महिमा का सदैव कीर्तन तथा श्रवण करते हैं। संगति की यही प्रणाली सनातन से संस्तुत होती आई है, किंतु इस कला तथा दिखावे के युग में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इसकी विशेष रूप से संस्तुति की गई है। अनुकूल तपस्या की निधि ना होने पर भी यदि कोई व्यक्ति उन महात्माओं की शरण में जाता है जो भगवान की महिमाओं के श्रवण और कीर्तन में लगे रहते हैं तो वह भगवत धाम वापस जाने के पथ पर अवश्य प्रगति कर सकता है। ओम अज्ञानमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वकरात्मिका वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिभ्यः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो
हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है आश्रम। तो इस अध्याय का नाम है विदुर वाला अन्य प्रश्न, क्योंकि पिछले भी अध्याय में विदुर जी और नैनपुर का यह प्रसंग चल रहा है। और विदुर जी ने कई प्रश्न पूछे और उनका उत्तर नैनपुर मुनि जी ने दिए। और 14वें श्लोक में नैनपुर मुनि जी ने निष्कर्ष निकाला कि आपके सब प्रश्नों का उत्तर है भगवान की अनन्य प्राप्ति। भगवान उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप आदि के कीर्तन तथा शरण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती है। तो शरण रूपात इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मैंने तो यह स्थापित किया कि भक्ति योग ही सभी समस्याओं का समाधान है। भगवान की शुद्ध भक्ति से हम सब समस्याओं से निवारण कर सकते हैं। और फिर 15वें अध्याय में विदुर जी ने बोलना शुरू किया और उन्होंने नैतिक मुनि का धन्यवाद किया और कहा कि आपके विश्वसनीय शब्दों से मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं। और फिर उन्होंने बताया कि जब तक कोई शुद्ध भक्त की सेवा में नहीं लगेगा वो इस भौतिक सृष्टि की वास्तविक स्थिति को समझ नहीं पाएगा। तो भौतिक सृष्टि कौन का भ्रम है, सब कुछ जानते हुए कि हम इस भ्रम में फंस जाते हैं। इस भ्रम से हम कभी नहीं लग पाएंगे जब हम किसी शुद्ध भक्त की सेवा में जुड़ेंगे। हम सब सुनते आए हैं जब से हम इस कौन से जुड़े हैं कि बहुत जगह दुखालय है, अशाश्वत है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी हमारे हृदय में अभी भी भोगने की प्रवृत्ति बनी रहती है, अभी भी कुछ आशा है, कहीं ना कहीं शायद कहीं आनंद छिपा हुआ है। तो इस भ्रम से छुटकारा नहीं मिलता। तो विदुर जी कह रहे हैं कि इस भ्रम से छुटकारा पाने का एक तरीका है शुद्ध भक्तों की सेवा। फिर उसके बाद कह रहे हैं 19वें श्लोक में कि गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन भगवान की सेवा में दिव्य भाव उत्पन्न करने में समर्थ होता है जो मधुर असुर के कूटस्थ शत्रु हैं और जिनकी सेवा से मनुष्य के भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं। और इससे पहले 18वें श्लोक में बताया था कि किस ढंग से भाव उत्पन्न होते हैं। अगर हम गुरु और मनुष्य की सेवा करेंगे तो भक्ति के लक्षण उत्पन्न होते हैं। और आज के श्लोक में बता रहे हैं कि जब भी जैसे मैंने विशेष रूप से चर्चा की, मैत्रेय मुनि जी ने बताया कि शुद्ध भक्ति करना ही सभी समस्याओं का समाधान है। और विदुर जी ने इस बात को अच्छे से समझा और उन्होंने कहा कि जब तक हम शुद्ध भक्त के चरणों की सेवा नहीं करेंगे हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और आज के श्लोक में बता रहे हैं, दुरापा ही अल्प तपसा सेवा वैकुंठ वसु कोई कह सकता है ये तो बहुत आसान है भक्ति को प्राप्त करना, कि बस शुभ भक्त को पकड़ो और उसकी सेवा करो। प्रभु जी हमें स्पष्ट कर रहे हैं कि इतना सरल नहीं है। जिन व्यक्तियों की तपस्या न्यून है, अल्प तपस्या, जिनकी तपस्या कम है, उनके लिए दुरापा बहुत दुर्लभ है। दुरापा ही निश्चित रूप से बहुत दुर्लभ है। ये कोई इतनी सरल बात नहीं है कि हम भक्तों की सेवा कर सकें। सरल बात भागवत के ज्ञान स्कंद पर आता है कि वैसे ये मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, ये भगवान के द्वारा दिया हुआ विशेष उपहार है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्लभ है शुद्ध भक्तों का संग, उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। तो यहां विदुर जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जिनकी तपस्या कम है उनको ये सेवा प्राप्त नहीं होगी। उन भक्तों की, कैसे भक्तों की, वैकुंठ वर्त मसूर, जो कि वैकुंठ यानी कि भगवत धाम के मार्ग पर अग्रसर है, कोई बैक टू गॉड है, जो कि भगवत धाम जाने के मार्ग पर अग्रसर है, उनकी सेवा कर पाने के लिए बहुत तपस्याएं चल रही है। और श्री राधा पाठ के साथ विषय हुई सीताराम जी हनुमान जी और बताया कि इन महात्माओं के लक्षण क्या है। इनके लक्षण है यज्ञ देव देवो जनार्दना। ये महात्मा नित्य महिमा गायन करते रहते हैं। किसका? देव देवो जनार्दन, देवों के देव जनार्दन का भगवान श्री कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में पहले ही बाकी में लिख रहे हैं कि समस्त अधिकारियों ने संस्तुति की है कि बिना महात्माओं की सेवा के हमें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जैसा कि भागवत में पांचवें स्कंद में जड़ भरत जी राहुल को कह रहे हैं, राहुल एक नाच एशिया नाम कहत हुआ नाच ना ही वर्णाश्रम धर्म के पालन करने से, ना ही घर छोड़कर संन्यास लेने से, ना ही वैदिक मंत्रों के उच्चारण से, ना ही जल और सूर्य में भीष्म तपस्या करने से, जब तक महात्माओं के चरणों से हम अभिषेक नहीं कराएंगे, हमें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। इसी ढंग से भागवत के साथ स्कंद में कैलाश महाराज जी के सामने नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने भी यही कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, मति न भक्तो मति न कृष्ण भक्तो बार बार चूसे हुए गन्ने को चूस रहे हैं जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है। तो ऐसे लोगों की मति कृष्ण में कैसे लग सकती है कि वो अकिंचन भक्तों के चरणों की धूल से अपना अभिषेक कर लेंगे। तो ऐसे भक्त, ऐसे लोग भी जो पूर्ण रूप से विकर्मी हैं, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, वो भी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है महात्माओं के चरणों की सेवा की महिमा। और यहां पर बताया जा रहा है कि इस संगति की यह प्रणाली सनातन काल से है, इस सनातन काल से। जैसे कि हम पढ़ते हैं ध्रुव महाराज के प्रसंग में, ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बालक हैं और अपनी माता सुरुचि के बाण रूपी पांडों से उनका हृदय दलील हो जाता है और वो एक ठान भी जाते हैं कि मुझे ब्रह्मा जी से गोपाल राज्य चाहिए और निकल पड़ते हैं मन की तरह तपस्या के लिए। तो रास्ते में उनको कौन मिलते हैं? नारद मुनि जी। तो नारद मुनि जी उनको समझाते हैं कि आप बहुत छोटे बच्चे हो, किन चक्रों में पड़ रहे हो, घर वापस जाओ, छोटी बातों का बोला नहीं मानते। लेकिन उनका नहीं, मैं तो जाऊंगा, अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं तो बताइए। तो फिर नारद मुनि जी ने उनको मंत्र दिया, विधि बताई कैसे भगवान का ध्यान लगाना है। और छोटे से बालक ने खूब तपस्या की। पहले महीने हर 3rd दिन उन्होंने कुछ फल खाए, दूसरे महीने हर 6th दिन सूखी घास और पत्ते खाए, तीसरे महीने हर 9वें दिन केवल जल ग्रहण किया, चौथे महीने हर 12वें दिन केवल वायु लिया, 5वें महीने पूर्ण रूप से सांस को रोक लिया और 6वें महीने 1 लाख पे खड़े हो गए। तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड हिल पड़ा। सब देवताओं के निवेदन करने पर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और भगवान विष्णु ने जैसे अपना शंख उनके मस्तिष्क में स्पर्श किया तो महाराज जितने भौतिक संघर्ष थे दूर हो गए और उनके अंदर दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ। और तब उनको मालूम चला कि कितनी बड़ी गलती कर दी उन्होंने। उनको सामने हीरा मिल रहा है और उस क्या मांग रहे हैं? टूटे हुए कांच के टुकड़े। और तब उन्होंने भगवान से क्या प्रार्थना की? तब उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे आप अपने शुद्ध भक्तों का संग दो। यानी कि इस घटना से हमें यह मालूम चलता है कि भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि ध्रुव महाराज को पहले भी मिले थे, लेकिन ध्रुव महाराज उनको पहचान नहीं पाए। उन्होंने कहा, आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो रास्ते से हटिए। उसके बाद उन्होंने तपस्या की और उनका पूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो गया, तब वो वैष्णव की महिमा को समझे। यानी कि जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे, ना तो हम भगवान का गुणगान कर पाएंगे, ना ही हम वैष्णव की महिमा को समझ सकेंगे। ये सब हम सब के साथ होता है। हम सब जो नए नए भक्ति में जुड़ते हैं तो हम भी प्रकट अवस्था में वैष्णव की महिमा को नहीं समझ सकते। इस भौतिक संसार में हर जीव ये समझता है कि पूरे ब्रह्मांड की रचना केवल मेरे भोग के लिए की गई है। कृष्ण भी मेरे भोग के लिए हैं, गुरु भी मेरे भोग के लिए हैं, भक्तगण भी मेरे भोग के लिए हैं। उसका केवल स्वकेंद्रित अपने ऊपर पूर्ण रूप से वो केंद्रित है। मुझे कैसे लाभ प्राप्त हो सकता है, मेरा मन और इंद्रियां कैसे संतुष्ट हो सकती है, तो वो पूर्ण रूप से भोग में लिप्त है। तो हर दृष्टि उसका दृष्टिकोण केवल भोग के लिए है। तो इसी ढंग से ध्रुव महाराज ने केवल नारद मुनि की दृष्टि से देखा कि आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन जब तपस्या की और भगवान के दर्शन को प्राप्त हुए, जब उनका शुद्धिकरण हुआ है, तब उनको मालूम चला कि शुद्ध भक्तों की क्या महिमा है। इसलिए वही बात हमें गुरु जी कह रहे हैं, जब तक तपस्या करके हमारा मन शुद्ध नहीं हो जाएगा, हम भक्तों की महिमा को नहीं समझ पाएंगे, हम भक्तों को साधारण समझेंगे। और ये जो विधि है सनातन काल से चलती आ रही है कि हमें भक्तों की शरण लेनी ही पड़ेगी, बिना उसके हम भक्ति नहीं कर सकते। और यहां शरण गौ का बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं कि ये सनातन काल से विधि है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में जो कि कला और दिखावे का युग है, हिपोक्रेसी दोगलापन उसका युग है, उसमें तो ये बहुत ही जरूरी है, परम आवश्यक है। क्योंकि कलयुग के लिए क्या खबर है, हरे राम हरे राम हरे राम एक ही बोला, कलो नाचते 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 प्रति रहने था। कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। तो तीन बार जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, इसका अर्थ यह है कि ना कर्म से, ना ज्ञान से, ना योग से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम। तो जब हम हरि के नाम के माध्यम से ही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, तो हरि का नाम हमें किनसे प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है हरि का नाम? वैष्णवों के माध्यम से। तो जब तक उन वैष्णवों की हम सेवा नहीं करेंगे, ये हरि नाम अपनी दिव्यता प्रकट नहीं करेगा। इसी ढंग से प्रतिदिन हम लोग जब नाम अपराध करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि हरि नाम के प्रचार में अपने जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना, ये अपराध है। तो हरि नाम और वैष्णव आपस में संबंधित है, क्योंकि तो उन्हीं वैष्णव की कृपा से हमें हरि नाम प्राप्त होता है। तो अगर हम वैष्णव की महिमा को नहीं समझेंगे, तो हरि नाम की महिमा भी हमारे सामने प्रकट नहीं होगी, और ये केवल शब्द ध्वनि रहेगी, ये दिव्य शब्द नहीं रहेंगे। और क्योंकि केवल यही रास्ता है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, केवल यही रास्ता है, इसलिए हमें खासकर कलयुग में निश्चित रूप से वैष्णव सेवा में जुड़ना चाहिए। तभी तो भक्तिनाथ ठाकुर जी अपने भजन में कहते हैं, सकले सम्मान करिते शकति देहनाथ यथाय तबे तो लाई बे हरि नाम मुखे अपराध हमे हक गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे ऋणापेक्षा कि गुरुदेव कृपा का बिंदु दीजिए जिससे मैं अपने आप को इनसे भी नीच समझ सकूं। सकले सम्मान परिते शक्ति देह नाम यथायत कृपा करके मुझे शक्ति दीजिए कि मैं सबका सम्मान कर सकूं। तभी तो हरि हरि नाम मुख्य अपराध हमें हर, तभी इस जीवा से हरि नाम निकलेगा। तो यहां तो भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमें प्रत्येक जीव की, प्रत्येक जीव को सम्मान देना चाहिए। भक्तों की बात नहीं की उन्होंने, प्रत्येक जीव को सम्मान देना चाहिए। जब तक हम प्रत्येक जीव को सम्मान नहीं देंगे, हमारी जीवा पर हरि श्री भक्ति सिंह ठाकुर महाराज को इसके आगे और लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक हम अपने आप को घास के तिनके से भी ज्यादा नीच नहीं समझेंगे, क्योंकि वही हमारी वास्तविक स्थिति है, ये कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है। ऐसा नहीं कहेंगे कल्पना कर रहे हैं कि हमें घास के तिनके से नीच होना है, ये हमारी वास्तविक स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति है। जीवे सुखे कृष्ण नित्य दास, नित्य दास, घास के तिनके से भी नीच हमेशा नित्य। तो कह रहे हैं कि अगर कोई जीव अपने आप को इससे एक इंच भी ऊपर समझ लेगा, तो उसके जीवा से हरि नाम चला जाएगा। कुछ क्षण के लिए भी उन्होंने हमने सोच लिया कि हमारी स्थिति घास के तिनके से कुछ ऊपर है, तो हमारे जीवा से हरि नाम चला जाएगा। तो तभी जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रणाम भी सुने चेन करोड़ भी सही सुना सदारी। ये चैतन्य महाप्रभु ने कोई अलंकारिक कविता नहीं रची है, महाप्रभु ने केवल आठ ही श्लोकों की रचना की, और बहुत ही व्यवहारिक उन्होंने बताया कि कैसे भक्ति करनी है। तो हम सब भक्तों का ये लक्ष्य होना चाहिए कि इस श्लोक को हम अपने जीवन में उतारें। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, अलंकारिक कविता नहीं है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए है। और भक्तिविनोद ठाकुर जी तो इसकी व्याख्या में कहते हैं कि शिष्टाष्टकम का तीसरा श्लोक भक्ति की कौन सी स्टेज को दिखाता है, जो नौ स्टेज है, निष्ठा। ये तो केवल निष्ठा है। और प्रतिदिन सुबह सुबह मंगल आरती में हम क्या बोलते हैं, हमारे जीवन में क्या लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम। तो वो तो कितनी ऊंची अवस्था है। तो अभी निष्ठा के स्तर पर पहुंचने के लिए हमें इस श्लोक को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, कंठ का गले का हार बनाना पड़ेगा, तब जाके हम कुछ प्रेम की दिशा में चल सकते हैं। तो इसलिए इस बात को हमें गहराई से समझना होगा।
इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि कलयुग का केवल दो ही धर्म है बस, पहला क्या है हरिनाम संकीर्तन और दूसरा वैष्णव सेवा, ये केवल दो ही धर्म है कलयुग के, हरिनाम संकीर्तन और वैष्णव सेवा। और चैतन्य महाप्रभु ने भी इसकी पुष्टि मध्य लीला में कही, प्रभु कहे नाम संकीर्तन वैष्णव सेवा द्वी करे शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण, कि नाम संकीर्तन करिए और वैष्णव सेवा करिए, शीघ्र ही हम कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। शिला भक्ति सिंह प्रभु महाराज अमृत वाणी पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि वो कहते हैं कि वैष्णव शब्द का क्या अर्थ है। अक्सर हम जानते हैं कि वैष्णव शब्द का अर्थ है जो विष्णु या कृष्ण के भक्त हो, तो कह रहे नहीं, असली वैष्णव वो है जो वैष्णवों का भक्त हो, जो वैष्णवों का भक्त है वही वैष्णव कहलाता है। और आदि पुराण में भी भगवान ने अर्जुन से यही कहा कि जो कहता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो वास्तविक भक्त है। तो जब तक हम वैष्णवों की सेवा नहीं करेंगे तो हम भक्ति नहीं कर सकते, यानी कि भक्ति का सरल भाषा में हो गया प्रेममयी वैष्णवों की सेवा। आचार्यगण कहते हैं कि अगर हम तथा कभी भगवान की भक्ति में लगे हैं लेकिन वैष्णवों की सेवा नहीं कर रहे तो उसका तो ऐसे मतलब हुआ कि जैसे कोई टूटे हुए मटके में पानी डाल रहा है, कैसे रुकेगा आत्मा, दिखने को भक्ति है तभी तो बोला गया दिखावे का लोग, दिखने को भक्ति है लेकिन पानी टिकेगा ही। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि तीन सिद्धांत हैं, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, और इन तीनों में जो वैष्णव सेवा है वही आधार है। और जब तक हम ये वैष्णव सेवा नहीं करेंगे नाम रुचि उत्पन्न नहीं हो सकती, जीवों पर हम दया नहीं कर सकते। जब तक हम वैष्णव सेवा में लग नहीं होंगे तब तक हम देहात चेतना में लग बैठे रहेंगे, जब तक हम वैष्णवों को अपना इष्ट नहीं मानेंगे तब तक हम जड़ और चेतन में अंतर नहीं कर पाएंगे। जब तक हम वैष्णवों की सेवा नहीं करेंगे अर्थ वगैरह हमारे लिए पत्थर रहेंगे, जब तक हम वैष्णवों की सेवा नहीं करेंगे नाम और नामी में अंतर रहेगा, जब तक हम वैष्णवों की सेवा नहीं करेंगे हमारा हृदय पत्थर की तरह कठोर रहेगा, जब तक हम वैष्णवों की सेवा नहीं करेंगे हम माया के चक्कर में फंसे रहेंगे और बार बार जल मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे। जब हम वैष्णवों के संपर्क में आते हैं तो हमारा पूरा पूरा भाग्य बदल जाता है, ये शक्ति तो देवताओं के पास भी नहीं, देवता गण भी बातें हैं कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देंगे, पाप और पुण्य का फल देंगे, लेकिन वैष्णव गण हमारे कर्मों में जाकर रूप बदल सकते हैं, हमें प्रचार करके भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, हमारे पूरे की पूरी जन्म कुंडली वैष्णवों की सेवा करने से बदल सकती है, जो कि देवतागण भी नहीं कर सकते। तो वैष्णव सेवा वैष्णव सेवा वैष्णव सेवा यही हमारी मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमने वैष्णवों की सेवा करनी। अक्सर जो मायावादी कर्म है वो कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, मानव सेवा माधव सेवा। तो अगर आज हम एक सेवा है कि वैष्णव सेवा विष्णु सेवा तो क्या विचार है, ये ठीक है स्लोगन? कितने गण कहते हैं कि ये स्लोगन ठीक है वैष्णव सेवा विष्णु सेवा, और कितने भक्त कहते हैं कि ये ठीक नहीं है वैष्णव सेवा विष्णु सेवा, कह सकते हैं ऐसा? अभी सुना नहीं आया, ऐसे विचार आया कि बोलना चाहिए, वो लोग बोलते हैं नर सेवा नारायण सेवा, हम कहेंगे वैष्णव सेवा विष्णु सेवा, वास्तव ये भी ठीक नहीं है, वैष्णव सेवा विष्णु सेवा के समान नहीं है, वैष्णव सेवा विष्णु सेवा से भी महान है। और इसकी पुष्टि पवित्र पुराण में भगवान शिव ने की है, आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधना करो तस्मा कर तुलो देवी तदी आराम संरचना, कि जितने भी आराध्य हैं उन सब में जो महान आराधना है विष्णु की है, लेकिन विष्णु की आराधना से भी महान है विष्णु से जुड़ी हुई वस्तुएं यानी कि भक्तों की आराधना। तो इस बात को हमें बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा तभी हम वैष्णव की शरण ग्रहण करेंगे कि विष्णु सेवा कृष्ण की सेवा से भी महान है, कृष्ण के भक्तों की सेवा। अब समस्या यह आती है कि हम ये सब बातें पहले से भी सुनते आए हैं, लेकर चाह कर भी हमसे वैष्णव सेवा नहीं होती। इसमें कोई बुरा नहीं मानेगा, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि जो सामान्य समस्या देखने को मिलती है, ये तीन सिद्धांत है, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। सोलह माला नामे रुचि तो नहीं है, नहीं किसी न किसी ढंग से सोलह माला कर लेते हैं। जीवे दया आज्ञा समझ के, साधना समझ के कुछ ना कुछ बचाव का प्रयास करते हैं, लेकिन वैष्णव सेवा के लिए हम कोई योजना नहीं बनाते, हमारे कोई साधना का कोई हिस्सा भी नहीं है। हो गई तो ठीक है, ना हुई तो भी ठीक है, और जितना मौका मिले हम उसको टालने का प्रयास करते हैं अक्सर। तो क्यों होता है ऐसा? इतनी महिमा सुनने के बाद भी, इतने शास्त्रों में सब कुछ बताने के बाद भी हम लोग इसके प्रति क्यों नहीं इतने कमिटेड हैं? कोई कारण बता सकते हैं? अंश तक सर और वापस बता सकते हैं? सब कुछ सुनने के बाद भी हम वैष्णव सेवा में लग नहीं होते, और बताया कि अगर तुम वैष्णव सेवा नहीं करेंगे तो ये भक्ति बहुत रहस्य में रहती है हमारे लिए। कृष्ण बड़े रहस्य में है, भक्ति बड़ी रहस्य में है। जो हमें स्लोगन सुन के आए कि चैंट हरे कृष्णा बी हैप्पी, ये खोखला लगता है, कोई आनंद अनुभव नहीं होता, नीरस लगता है, सालों साल बीत के लिए आनंद प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, अहंकार है हमारा, और हम अहंकार की, अपने झूठे अहंकार और अपने मन की शरण लेना चाहते हैं। हमारा मन हमें रोकता है, हमारा अहंकार हमें रोकता है। ज्यादा से ज्यादा गुरु की शरण ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वैष्णवों की सेवा करना उसमें हमारा अहंकार कटता है, हमारी स्वतंत्रता चली जाती है, और यह स्वतंत्रता हमें बहुत प्रिय है, ये अहंकार हमें बहुत प्रिय है। इसलिए सब कुछ सुनने के बाद भी हम शरण ग्रहण नहीं कर पाते। यह भी समझना पड़ेगा कि हम सब भौतिक जगत से लगभग अपना संबंध तोड़ चुके हैं, और पूर्ण रूप से आश्रित होने के लिए हरिनाम संकीर्तन आंदोलन में हम जुड़े हैं, और हम सबका यही प्रयास है कि हम भक्ति में आगे बढ़ें। लेकिन कुछ साधारण बातों को, जो कि दिखने में बहुत साधारण रहती है, उसको हम सही ढंग से उनका साक्षात्कार नहीं कर पाते। हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि भक्ति भावुकता का विषय नहीं है, भक्ति पूर्ण रूप से विज्ञान है, एक विशेष विज्ञान है, स्पेसिफिक साइंस है, और इसी विज्ञान का ज्ञान देने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, और चैतन्य महाप्रभु के मनोभित को समझकर रूप गोस्वामी जी ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया और शास्त्रों का संकलन किया, ताकि हम जैसे बच्चे इन शास्त्रों को पढ़े, गुरु और शास्त्रों के माध्यम से इसको समझे और इस विज्ञान को अपने जीवन में उतारे। तो हमें अपनी मनोकल्पना से बिल्कुल नहीं चलना। श्री प्रभुपाद कहते थे कि कृष्ण कॉन्शियस जो मोमेंट है, ये हमारे सूक्ष्म शरीर को बदलने के लिए। स्थूल शरीर तो हम कई बार बदल चुके हैं, स्थूल शरीर तो बिना प्रयास के बदल ही जाएगा, पशु भी स्थूल शरीर बदलेंगे, लेकिन सूक्ष्म शरीर केवल इस मनुष्य योनि में ही बदल सकते हैं, और वो इस हरे कृष्ण आंदोलन में आकर ही हमारे सूक्ष्म शरीर को बदल सकते हैं। यानी कि जो हमारे मानसिक विचार है, जो हमारा झूठा अहंकार है, जो हमारी बुद्धि है, इसको हमने बदलना है। इसको हमने बदल दिया तो हम भगवान चले जाएंगे, नहीं तो बार बार इस जन्म के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो इस सूक्ष्म शरीर को बदलने के लिए हमें भक्तों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। श्री प्रभुपाद यही तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अगर आपके पास ये तपस्या की निधि नहीं है, आपके पास ज्यादा तपस्या का धन नहीं है, अल्प तपस्वी है, तो कैसे हम वैष्णव सेवा कर सकते हैं? कहा जा रहा है कि महात्माओं की शरण ग्रहण करो, उनके शेल्टर में जाओ, उनकी शरण ग्रहण करो। तो कई बार हम सोचते हैं कि महात्माओं की शरण लिखा हुआ है, शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करने को लिखा हुआ है, और शुद्ध भक्त तो बहुत ही रेयर होते हैं, तो हम कैसे उनकी शरण ग्रहण करें, कैसे भक्ति में आगे बढ़े? तो हमें ये बात समझनी होगी कि शुद्ध भक्त और महाभागवत में अंतर होता है। शुद्ध भक्त होने के लिए उत्तम अधिकारी होना आवश्यक नहीं है, कनिष्ठ अधिकारी भी शुद्ध भक्त हो सकता है, मध्यम अधिकारी भी शुद्ध भक्त हो सकता है। शुद्ध भक्त का अर्थ है जो अपने गुरु और आचार्य के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का पूरा निष्ठा से प्रयास कर रहा है, उसके भी अनर्थ निकल भी नहीं हुई है, काम क्रोध लोभ मत्सर को सब सता रहे हैं, लेकिन वो पूरी निष्ठा से प्रयास कर रहे हैं गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए। प्योरिटी ऑफ पर्पस उसका उद्देश्य शुद्ध है, वो पूरे प्रयास कर रहा है, शत प्रतिशत प्रयास कर रहा है भक्ति में आगे बढ़ने का, गुरु के आदेशों का पालन करने का। तो ऐसे अधिकारी को शुद्ध भक्त कहा जा सकता है। और अगर गुरु के निर्देश है कि हम ऐसे शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करें तो निश्चित रूप से हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए। देखिए हमें व्यवहारिक होना पड़ेगा। इस हरे कृष्ण जो आंदोलन है एक प्रचार का आंदोलन है और जो गुरुजन है उनके हजारों शिष्य हैं। प्राचीन काल में जो शिष्य था वो हमेशा गुरु के संरक्षण में ही रहता था, तो गुरु उसको व्यक्तिगत रूप से समय समय पर निर्देश देते थे। लेकिन हरे कृष्ण आंदोलन में क्योंकि हमें प्रचार करना है, ऐसा संभव नहीं है कि गुरु और शिष्य हमेशा साथ साथ रह सके। तो शिष्य को जो भक्ति कर रहा है उसको समय समय पर मार्गदर्शन चाहिए। तो कैसे मार्गदर्शन प्राप्त करेगा, कैसे किस ढंग से वो वैष्णव सेवा करेगा, तो इस मार्गदर्शन के लिए उनको जो उनके वरिष्ठ भक्त हैं उनकी शरण में जाना चाहिए और वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में रहकर सेवा करनी चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने मन की शरण ग्रहण करेंगे और मन के हिसाब से चलेंगे। भक्ति फ्रीलांस नहीं हो सकती। बाहर के दुनिया में हम शब्द सुनते हैं फ्रीलांसर, कोई फ्रीलांसर जर्नलिस्ट है, कोई फ्रीलांसर लॉयर है, कोई फ्रीलांसर डॉक्टर है, कि अपनी मर्जी से। हिंदी में उसको बोलेंगे मन मौजी है, मन में जो आया किया। तो उनके लिए भक्ति नहीं है। भक्ति एक विज्ञान है और भक्ति में बहुत अनुशासन से हमें चलना पड़ेगा। जैसे जैसे वरिष्ठ भक्तगण हमारा मार्गदर्शन करेंगे उसी मार्गदर्शन के अनुसार हमको चलना होगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हम अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे देंगे। और देखिए इसके उदाहरण, ये ऐसा नहीं है कि ये समय परिस्थिति और काल को देखते हुए इस बात का आविष्कार किया गया है कि चलो गुरु जी के पास टाइम नहीं है, उन्होंने बोल दिया अपने प्रतिनिधियों को कि आप उनका ख्याल रखिए, तो ये तो अभी का आविष्कार है, इसी समय का आविष्कार है। ऐसा नहीं है, ये तो हम देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के समय से। आप सबको उदाहरण याद है, कहां पर याद उदाहरण आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने बहुत प्रिय भक्त को किसी दूसरे भक्त के संरक्षण में डाला। रघुनाथ दास गोस्वामी जी बचपन से प्रयास कर रहे थे, घर से भाग भाग के चले जाते थे कि महाप्रभु के पास उनको रहना है। आप सब जानते हैं इसका साथ कितना उन्होंने प्रयास किया, कितनी तपस्या की, कितना ज्यादा उनके अंदर ग्रह था, और अंततः उनके वजह नित्यानंद प्रभु की कृपा दृष्टि हुई और जब वो घर से भागने में समर्थ हुए तो फिर पुरी में जब वो पहुंचे 12 दिन तक भागते भागते तो रास्ते में केवल कभी कभी थोड़ा सा दूध पी लेते थे। भूखे प्यासे भाग भागते हुए आए, जंगलों से होते हुए महाप्रभु की उन्होंने शरण ग्रहण की, तो महाप्रभु ने क्या कहा उनको, महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया और फिर अपने प्रिय भक्त स्वरूप दामोदर को बुलाया और बोला स्वरूप दामोदर अब इसको संभालो, इसकी उतनी देखभाल करो जैसे कि तुम्हारा पुत्र हो। और बोले अब हमारे पास 3 रघुनाथ हैं, एक है वैद्य रघुनाथ, एक है भट्ट रघुनाथ, प्रिय है दास रघुनाथ, तो इस दास रघुनाथ को हम उतारेंगे स्वरूप का रघुनाथ कि उसको संभालो, अभी तुम्हारी जिम्मेवारी है। उसके बाद रघुनाथ दास को स्वामी जी स्नान करते हैं और गोविंद उनको महाप्रभु का महाप्रसाद देते हैं। 5 दिन तक वो महाप्रसाद खाते हैं, 6ठे दिन वो भिक्षाटन करने सिंह द्वार में चले जाते हैं। तो महाप्रभु को जब मालूम चलता है महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। उसके अगले दिन रघुनाथ दास गोस्वामी जी अभी भी संतुष्ट नहीं है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी स्वरूप दामोदर से पूछते हैं कि मैंने ऐसे ही घर छोड़ा, मैं कुछ तपस्या तो कर नहीं रहा, आखिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये मुझे आदेश दें। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को अगर कुछ प्रश्न भी पूछने हैं तो वो स्वरूप दामोदर जी के माध्यम से पूछ रहे हैं। तो स्वरूप दामोदर जी उनको चैतन्य महाप्रभु के पास ले जाते हैं और बोलते हैं कि रघुनाथ आपसे प्रश्न पूछना चाहता है, ये उनका प्रश्न है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे कुछ निर्देश दें। तो आपको मालूम है महाप्रभु को क्या उत्तर था, महाप्रभु ने कहा अरे मैंने तुम्हें सौंप दिया है ना स्वरूप दामोदर के पास, इसी से पूछो, यही तुम्हें निर्देश देगा, ये तो मुझसे ज्यादा जानता है, ये तो मुझसे ज्यादा जानता है। तो ये जो पद्धति है, प्रणाली है कि गुरु हमें एक प्रतिनिधि नियुक्त कर रहे हैं कि आप इसके इस प्रतिनिधि के अंदर रह के भक्ति का पालन कीजिए, तो ये चैतन्य महाप्रभु के समय से है। तो आज इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि ये हरे कृष्णा आंदोलन कोई आम आंदोलन नहीं है। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं चैतन्य चंद्रमन के तात्पर्य में कि इस आंदोलन का संरक्षण स्वयं चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, क्लोजली सुपरवाइज कर रहे हैं। ये एक मिशन है, मिशन का अर्थ है एक आंदोलन। हम सबको लड़ाई लड़नी है माया से, तो एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस ढंग से हम जानते हैं कि भारतीय सेना में सारे के सारे जो सैनिक हैं उनका कमांडर इन चीफ से कोई संपर्क नहीं होता, पूरी हायरार्की होती है, लेफ्टिनेंट, मार्शल, कैप्टन, ब्रिगेडियर, उसके बाद तो प्रत्येक जो अधिकारी है वो अपने पास निकटतम अधिकारी के संरक्षण में रहता है और सारे के सारे क्लोज सुपरविजन में रहते हैं। सैनिकों के घर से अगर कोई पत्र भी आता है तो उस पत्र को पढ़ा जाता है, नो प्राइवेसी। तभी सबके सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ सकते हैं, उस लड़ाई में सफल हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि युद्ध के स्थल पे सब सैनिक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तो कोई इधर भटक रहा है, कोई उधर भटक रहा है, उनके ऑफिसर आदेश दिए जा रहे हैं, कर लेंगे, देख लेंगे, जल्दी क्या है, मेरे को अभी ये करना है। हर एक अपने अलग अलग प्रायोरिटी हो तो युद्ध हो सकता है, निश्चित रूप से ऐसी सेना हार जाएगी। और जब सेना हारेगी तो प्रत्येक सैनिक की हानि होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सेना हार जाए और सैनिक जीत जाए। सैनिक की व्यक्तिगत जीत भी सेना की जीत में है। तो हम सबको समझना पड़ेगा कि पूरा का पूरा आंदोलन एक मिशन है। हम सब श्री प्रभुपाद जी के सैनिक हैं, श्री प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के सेनापति हैं। तो हमारा एक परम कर्तव्य है कि हमारा जो अपना व्यक्तिगत प्रायोरिटीज हैं, हमारी जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, उनको हम भूलकर जो इस मिशन की आवश्यकता है उसको ज्यादा महत्व दें, उसी में हमारी सफलता है। तो इसके लिए हमें अपने मन की शरण को त्यागना पड़ेगा। इसलिए गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि अगर हम मन की बात सुनेंगे तो निश्चित रूप से नर्क में जाएंगे, निश्चित रूप से नर्क में जाएंगे। हमने सब कुछ तो कर लिया, भौतिक जगत से संबंध तोड़ के जब हम पूर्ण रूप से आश्रित होने ही लगे हैं, तो क्यों नहीं अपनी स्वतंत्रता को भी हम गुरु और वैष्णवों को अर्पण कर दें। तब हम इस कृष्णा भाना भावित आंदोलन के असली आनंद को प्राप्त करेंगे, अन्यथा सब बातें बिल्कुल ढकोसली लगेंगी, झूठी लगेंगी। वो कन्विक्शन हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं होगा, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित नहीं होगा, केवल ज्ञान ही रह जाएगा। क्योंकि जो भक्ति है पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर है, अपने प्रयासों से भक्ति नहीं कर सकते। तो कृपा करने के लिए हमें दास दासानुदास होना ही पड़ेगा। जितने ज्यादा भक्तों के हम दास होंगे उतनी ज्यादा हमें कृपा मिलेगी। तो जब तक कृपा नहीं मिलेगी दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। तो शास्त्रों के शास्त्र हम पढ़ लेंगे, श्लोकों के श्लोक हम याद कर लेंगे, लेकिन उनका सार हमें समझ में नहीं आएगा। तो एक विज्ञान है, तो हमें मन की शरण ग्रहण नहीं करनी है और पूर्ण रूप से भक्तों की शरण ग्रहण करनी है, उनके निर्देशों को अपना जीवन समझना है। हमारा प्रत्येक कार्य गुरु साधु और शास्त्र से प्रमाणित होना चाहिए। भक्ति श्री राम ठाकुर महाराज कहते हैं कि हमें हर एक कदम पर गाइडेंस चाहिए, हर एक कदम पर हमें निर्देशन चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल बद अवस्था में हैं, बिल्कुल बद अवस्था में। अपने मन के हिसाब से हम बिल्कुल नहीं चल सकते। मन के हिसाब से चला जाने की आध्यात्मिक आत्महत्या। कोई मन हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, मन जड़ है, मन कभी भी नहीं चाहेगा कि हम आध्यात्मिक जगत में वापस जाएं। मन हमेशा यही चाहेगा कि मैं इस भौतिक जगत में ही सड़ता रहूं, इंद्र तृप्ति करता रहूं। तो इस बात को हमें समझना है। भक्तगण ही हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं, और जो भक्तगण है ये कोई साधारण भक्त नहीं है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जो हरिनाम संकीर्तन आंदोलन में जुड़े हैं, ऐसे भक्त पर हम जब नाचते हैं तो उनके नाच के द्वारा इस पृथ्वी में जितना भी अमंगल है सारा का सारा अमंगल दूर हो जाता है। और ऐसे भक्तगण जब अपनी दृष्टिपात करते हैं तो दृष्टिपात करने से 10 दिशाओं की अमंगल दूर हो जाता है। जब ऐसे भक्तगण हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे उच्चतर लोगों में भी जो अशुभता है वो दूर हो जाती है। इतनी शक्ति है हरिनाम संकीर्तन आंदोलन में, इतनी शक्ति है। तो इस आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रत्येक भक्त बहुत ही विशेष व्यक्ति है, बहुत विशेष। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के एक एक भक्त में इतनी शक्ति है कि वो पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है। तो हमारे साथ जो भक्तगण बैठे हैं, किसी को भी आप साधारण मत समझिए, ये कोई तुक्के की बात नहीं है कि हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, ये कोई चांस की बात नहीं है कि हम श्री प्रभुपाद की शरण में आए हैं, ये चैतन्य महाप्रभु का प्लान है, ये उनकी योजना है। क्योंकि ये सतयुग शुरू हो गया है, 10,000 साल का खंडन संकीर्तन बहुत बढ़ेगा, तो हम सबको चैतन्य महाप्रभु ने चुना है, हम उनके सैनिक हैं, तो इस बात को हमें समझने का प्रयास करना है। एक एक भक्त जो इस संकीर्तन आंदोलन में जुड़ा है बहुत महान है, तो अगर उन महान भक्तों की शरण का हमें आदेश मिलता है तो बहुत ही हृदय से हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसी से ये मिशन आगे बढ़ेगा। हम सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो छोटी छोटी बातों में फंस कर हम इस इतना सुनहरा जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है अपना भी उद्धार करने का और पूरे जगत का उद्धार करने का, उसको हम खो बैठे, ये कृपा बार बार नहीं मिलेगी। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि असली विद्वान वही है जो प्रत्येक वस्तु को यथारूप देख सके। हम सबको सोचना चाहिए कि प्रतिदिन हम बोलते हैं जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, लक्ष्य तो ये है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, प्रयास कैसे है आपके, प्रयास है नर्कों में जाने का, मन की बात सुन रहे हैं वैष्णव प्राप्त कर रहे हैं वैष्णव में जाने का, और केवल बोलने के लिए बोल रहे हैं कृष्ण प्रेम, क्या है क्या कर रहे हैं क्या दिशा है क्या उद्देश्य है कुछ पता नहीं, तो कब तक ऐसा जीवन चलेगा, कब तक? और जब तक ये दिखावे का जीवन जिएंगे कुछ प्रसन्नता आनंद नहीं रहेगा। तो हमारे पास श्री प्रभुपाद की कृपा से वरिष्ठ भक्तगण हैं जिनको बहुत अनुभव है, और हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण सिंह महाराज की तीव्र इच्छा है कि दिल्ली में भी ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हो अच्छे ढंग से, जिसको कि आज की अपनी भाषा में कहा जाता है काउंसलर सिस्टम। तो वैसे काउंसलर सिस्टम चैतन्य महाप्रभु के पहले से, अब काउंसलर सिस्टम भी सनातन है, भक्ति में हर चीज सनातन है, भक्ति में अगर कोई चीज फैब्रिकेटेड है जिसका आदि है तो उसका अंत भी होगा। भगवत धाम में भी काउंसलर सिस्टम है, हर अनुकूल है कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा, उत्तम भक्ति वही है जो अनुकूल यानी कि राधा रानी के अनुगत होकर की जा रही है, सारी के सारी गोपियां राधा रानी के अनुगत है। श्रील भक्ति सिंह महाराज बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, बड़े महाराष्ट्र में करोड़ों गोपियां हैं और करोड़ों गोपियों का एक ही उद्देश्य है कृष्ण को संतुष्ट करना। अब देखिए, अब हर एक गोपी और अलग अलग तरीके से कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करेगी, करोड़ों गोपियां हैं, कृष्ण को पसंद करने की, कोई गोपी ऐसे नाचे कोई गोपी ऐसे नाचे, कोई आगे पैर ले जाए कोई पीछे पैर ले जाए, तो कैसा लगेगा दृश्य, बिल्कुल बेकार लगेगा दृश्य। हम जैसे कामुक जीव भी, और जगह में कोई कामुक जीव है जो सिनेमा देखने जाता है और सिनेमा में उसको कोई ग्रुप डांस दिखाते हैं, 100 सैकड़ों लोग नाच रहे हैं, तो कैसे नाचते हैं, सबके सब मिलके नाचते हैं, इसके लिए एक डांस डायरेक्टर होता है, उसको बोलते हैं कोरियोग्राफी, वो पूरा डांस डायरेक्शन करता है, 100 के 100 लोग जो एक्स्ट्रा होते हैं वो एक ही दिशा में हाथ पैर हिलाते हैं, तो हमें दिखने में अच्छा लगता है। इसी ढंग से जो करोड़ों गोपियां हैं वो सब कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हैं, तो करोड़ों के करोड़ों गोपियां राधा रानी जी के निर्देशन में नाच रही हैं ताकि कृष्ण प्रसन्न हो। तो इसी ढंग से हम भक्त लोग भी जब आचार्य के सामने नाचते हैं तो हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम सब मिलकर एक ही दिशा में नाचें, एक ही तरीके से नाचें। नहीं जी मुझे तो ऐसे नाचना अच्छा लगता है, मैं तो ऐसे नाचूंगा, हमारा कोई ऐसा व्यक्तिगत संबंध नहीं है, उस स्थिति में नहीं हुए, हम फ्रीलांसर नहीं बन सकते कि मैं कृष्ण को इस ढंग से प्रसन्न करूंगा। हम कृष्ण को जो कुछ भी अर्पण करेंगे हमें वैष्णवों के माध्यम से अर्पण करना चाहिए, वैष्णव एक माध्यम है जिनके द्वारा कृष्ण हमारे ऑफरिंग्स को स्वीकार करेंगे, हम डायरेक्टली कृष्ण को कुछ भी अर्पण नहीं कर सकते, तो सब वैष्णवों के माध्यम से बीच में रहकर भी हमें कृष्ण को कुछ अर्पण करना चाहिए, तभी कृष्ण उसको स्वीकार करेंगे। तो स्वयं गोपियां राधा रानी जी से परामर्श लेती हैं और स्वयं राधा रानी जी भी ललिता विशाखा सखी से परामर्श लेते हैं। तो ये सनातन सिस्टम है, इस बात को हमें समझना है। श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बताया, उनके शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद भगवान हमने भी पिछले जन्मों में कुछ तपस्याएं की होंगी, बहुत से यज्ञ किए होंगे, वैदिक अनुष्ठान किए होंगे, तभी हम भक्ति में जुड़े हैं।
तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा था कि आपके पास कोई भी स्वीकृति नहीं है, रास्कल्स आई एम गिविंग यू द स्वीकृति, मैं तुम्हें स्वीकृति दे रहा हूं। इसी ढंग से हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें चैतन्य महाप्रभु ने चुन लिया इस आंदोलन में आने के लिए, हम बड़े महान हैं। हम महान बने हैं प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, उनकी कृपा से हम इस आंदोलन में जुड़े हैं। तो हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए वैष्णवों का, वैष्णवों के और वैष्णवों के संग में रहते हुए उनकी सेवा करते हुए हमने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। जब हम वैष्णवों की सेवा करेंगे तो ये मार्ग बहुत ही सरल है, सुसुखम करते मार्ग है, सुसुखम, ये पूर्ण रूप से आनंदमय है। लेकिन हम वैष्णव सेवा छोड़कर नाम लेने का प्रयास करेंगे या प्रचार करने का प्रयास करेंगे, सबका सब केवल बाहरी स्तर पर है, दिखावा रहेगा, ना हमें संतुष्टि होगी, ना हमारे हृदय में परिवर्तन होगा, ना हम दूसरों के हृदय में परिवर्तन ला पाएंगे। तो इसलिए आज के श्लोक से हमें ये समझने का प्रयास करना है और हमें प्रार्थना करनी चाहिए सभी वैष्णवगण से हम इस अपने जीवन में बताने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। Thank you.
का
जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि ये तो दुनिया है, ये सीनियर है, हम तो सीनियर हो गया दुनिया जो हम सेवा करे हैं, पर कोई दुनिया को हम काट दिया तो दुनिया सोचता है क्यों मैं सीनियर को पा जाऊँ मेरे को काट कर। तो इस कारण से हम वक्त में पीछे पड़ गए हैं, हम कैसे आगे बढ़े।
बहुत सुंदर प्रश्न है, प्रैक्टिकल प्रश्न कि वैष्णव की सेवा जो करे जाते हैं रपे सीनियर है जूनियर है बराबर का है, सीनियर डांटेगा जूनियर के झुकियों पास खड़ा है, बराबर वाले के पास पैसे वेस्ट है तो क्या करें। तो श्रीमद् भागवतम में बताया जा रहा है कि अगर हम केवल ये सीख लें कि भक्तों के साथ कैसे संग करना है तो हमें परम सिद्धि प्राप्त हो जाए। बस और कुछ नहीं जानना, केवल ये जानना है कि भक्तों के साथ संग कैसे करें। श्रीमद् माधवाचार्य जी कह रहे हैं कि अगर हमने ये नहीं सीखा कि भक्तों के साथ कैसे संग करना है और उनके प्रति हम अपराध करते रहे तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण स्वयं उस साधक के मार्ग पर अटकलें डालेंगे कि वो मेरे धाम ना आ सके। तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो वैष्णव के प्रति अपराध करें, फिर भगवत धाम है जो केवल वैष्णव नहीं है। तो कैसे सीखें, तो नारद मुनि जी ध्रुव महाराज को सिखा रहे हैं कि वैष्णव संग कैसे करना चाहिए, कि जो हमसे उत्तम है जो हमसे ज्यादा भक्ति में अग्रसर है उसकी हमें सेवा करनी चाहिए। जैसे ही कोई ऐसे वैष्णव को देखें तो हमें लगे बहुत अच्छा अवसर आया कि हम अपने संदेह को दूर कर सकें और उसकी सेवा करनी चाहिए। और जो हमारे बराबर के मिलते हैं उनसे हमें मित्रता करनी चाहिए। अक्सर जब हम अपने बराबर वालों से मिलते हैं तो हम ये दिखाते रहते हैं कि मुझे आपसे ज़्यादा मालूम है, मेरी साधना आपसे ज़्यादा बेहतर है, मैं आपसे बेहतर हूँ, तो हम मित्रता नहीं कर सकते। मित्रता का अर्थ ये है कि हम एक दूसरे को मदद करें उसकी सेवा में। हर एक के पास कोई ना कोई सेवा है तो हम मित्रता गाड़ी कर सकते हैं उस भक्त को, उसका जो सेवा उसकी तरफ गुरु की तरफ प्रदान की उसकी सेवा में उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो इससे हमारी मित्रता घनिष्ठ होगी। और जो हमसे जूनियर भक्त हैं उनके हम पर दया की दृष्टि रखनी चाहिए। जो जूनियर भक्त आते हैं सब कुछ छोड़कर तो वो चाहते हैं कि उनको प्रेम मिले, कोई उनकी केयर करे, तो उनके साथ हमें वही प्रेम देना है, वही उनको केयर करनी है जो कि उनके माता पिता से प्राप्त होती है। चैतन्य महाप्रभु ने रसूल अवर कहा कि इसको अपने बेटे की तरह रखना, तो हमारे जूनियर्स हैं उनको हमने अपनी संतान की तरह देखना, उनका पूरा ध्यान रखना है, उनको प्रेम देना है। जो हमारे से उच्चतर है उनसे हमने प्रश्न पूछने हैं, संदेह दूर करने हैं, जो हमारे बराबर है उनसे हमने मैत्री करनी है। तो ये बातें सुनने में सरल है लेकिन इसको हम अप्लाई करेंगे तो बहुत कठिनाइयाँ आती हैं क्योंकि हमारा अहंकार है। लेकिन इसी को अपने जीवन में उतार लेंगे, वैष्णव का संग करना सीख लेंगे तो सारा का सारा देवी ज्ञान प्रकाशित होगा। कि जब हम इस प्रकार की शिक्षा के पथ पर चलने का प्रयास करते हैं तो इसको व्यवहार में लाने पर एक ऐसा महसूस होता है कि ये शिक्षाएं सिर्फ शिक्षा ही है, व्यवहार नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग भक्तों का व्यवहार अनुकूल नहीं होता। तो ये तो बहुत ही पुराना प्रश्न है, हर किसी को यही डाउट आता है कि ये खाली थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल कोई भी व्यक्ति करते हुए दिखाई नहीं दिया, कोई भी ऐसा नहीं है वैष्णव एटिकेट का पूरा पालन कर रहा हो, उस वक्त ये कमी है, उस वक्त ये कमी है, वो प्रणाम ऐसे करते हैं, लोगों ने माला ऐसे पकड़ी हुई है, वो प्रसाद ऐसे खा रहे हैं, कई कमी ये कमी ये कमी, कोई परफेक्ट नहीं है, ये सब किताबी बात है। कोई बात नहीं, सोच लीजिए ऐसा नुकसान किसका हो रहा है, आपका नुकसान किसका भला करने आया, पहले अपना भला करो, अपने आप को सुधार। भक्तिनो ठाकुर जी ये कहते हैं दूसरों के अपराधों को मत देखो, ये आपका काम नहीं है, अपने को देखो, आप दोष दृष्टि करो, नहीं तो पूरी कई जन्म बीत गए ऐसे, ये हम इस जन्म में नहीं कर रहे हैं, कई जन्मों से ऐसे ही कर रहे हैं। भगवान कृपा करते हैं, वैष्णव का स्थान देते हैं, हम अपने मन का स्थान लेते हैं, वैष्णव में दोष ढूंढते हैं, फिर अगला जन्म फिर यही करते आ रहे हैं, बहुत जन्म करे श्रवण कीर्तन भगवान मन पाए कृष्ण का प्रेम कर, ये कारण है दूसरों के ऊपर दोष नहीं। तो मनुष्य धर्म दूसरों के दोष देखने में नहीं मिला, अपने अंदर देखेंगे बहुत दोष मिल जाएंगे, उन्हीं को सुधारा। तो हमारे जीवन का लक्ष्य यह है कि हम जज करें दूसरे को, तो जो कर रहे हैं करने से हम तो पहले से नहीं जवाब करें, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप शुड वी हैव विद गुरु, शुडंट इट बी पर्सनल और वी शुड ऑलवेज बी अंडर आवर काउंसलर। किस तरह का हमारा संबंध होना चाहिए गुरु के साथ, या फिर व्यक्तिगत संबंध नहीं होना चाहिए कि हमेशा हमें काउंसलर के अंडर ही रहना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि जब काउंसलर के अंदर आएंगे तो गुरु के साथ हमारा संबंध भी छेद हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब सरू दामोदर जी रंगनाथ दास को ले गए चैतन्य महाप्रभु के पास कि आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता है, तो महाप्रभु ने यही कहा कि ये आपको निर्देश देंगे ये मुझसे बेहतर जानता है, फिर भी मैं तुझे बता देता हूँ, भला ना खाएंगे भला ना पाएंगे, ग्रामे कथा ना सुनेंगे ग्रामे कथा ना करेंगे, ये निर्देश भी दे दिए। तो जो काउंसलर है वो तो एक बीच के ही माध्यम है, काउंसलर के वो इतने परिपक्व अवस्था में रहेंगे तो समझ जाएंगे किस समस्या के लिए आपको उनके पास ले जाना है। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि काउंसलर सिस्टम में काउंसलर के साथ रहेंगे तो गुरु के साथ व्यक्ति का संबंध खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि गुरु के साथ संबंध हमारा और घनिष्ठ होगा, हम गुरु के मनोविष्ट को समझ पाएंगे, उनकी आज्ञा का अच्छे ढंग से पालन कर पाएंगे। अगर हम काउंसलर के अंदर नहीं रहेंगे तो अपने मन से चलेंगे और हमें मालूम नहीं चलेगा गुरु की आज्ञा का कैसे पालन करें। तो गुरु के साथ हमारा संग उनके वाणी को पालन करने से होता है, उनके साथ साथ घूमने से नहीं होता, उनकी वाणी का हम सही ढंग से पालन कर सकें तभी वो हृदय से हृदय का संबंध जुड़े, प्रकृति का संबंध बना है।
सेवा में बाधा کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے من کو کیسے اوپر آئیں تاکہ ہم ویشنو کی سیوا کر سکیں. بول پرشن یہ ہے مائنڈ مائنڈ از مین پرابلم. پرائڈ ہاؤ کم کمفرٹ پرائڈ ٹو سرو دا ویشنو, کہ اپنے جھوٹے اہنکار سے کیسے اوپر اٹھیں کہ ہم ویشنو کی سیوا کر سکیں. تو اس کا کیول ایک ہی اتر ہوتا ہے کہ ہم مانسک دھراتل سے ہمیں اپنے آپ کو اوپر اٹھانا پڑے. ابھی ہم مینٹل پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں. مانسک دھراتل سے اوپر اٹھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ گرو سادھو شاستر کے انوسار چلیں, بدھی کا پریوگ کریں. جب ہم شاستر پڑھتے ہیں تو ہماری بدھی دیویہ ہوتی ہے, تو بدھی کا پریوگ کریں. ہر ایک شاستر میں بار بار یہی نشکرش نکالا جا رہا ہے کہ بن چھاڑیا ویشنو سیوا نشچار پائی چکے گا. ویشنو سیوا نہیں کریں گے تو یہ پروسیس کام نہیں کرے گا, ایک سائنس ہے. اب سمجھ جائیں, کم سے کم ہماری یہ استھتی تو ہو ہی جانی چاہیے کہ ہمیں معلوم چل جائے ہم کس دھراتل پہ کام کر رہے ہیں. فزیکل لیول پہ کام کر رہے ہیں, مینٹل پہ ہیں کہ بودھک استر پہ یا ایگو کے استر پہ, اتنا ہمیں معلوم چل جانا چاہیے. اور پھر ہم سہارا لیں سادھوؤں کا, ان کے نردیشوں کا, شاستروں کا, تو پھر ہم اپنے آپ کو من کس دھراتل سے اوپر اٹھا سکتے ہیں اور غلطی نہیں کریں. حالانکہ ہمارے اندر بہت سی بھوتک اچھائیں رہیں گی, بہت سے ٹیمپٹیشنس رہیں گے کہ نہیں نہیں اس کو پالن نہیں کرنا, اور اہنکار ہمیں روکے گا, لیکن بدھی کو ہم بلوان کر لیں گے تو اس کو ہم اوور کم کر لیں. اس لیے شاستروں کو ہم اچھے درشٹی سے پڑھیں, سادھوؤں کا سنگ کریں اور ان کے آدیشوں کو اپنا جیون سمجھیں.
Thank you. तो अब जो धन्यवाद।